शांति। बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे। बाबा कहते स्वदर्शन चक्र फिराने से क्या होगा, चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र फिराने से, कभी कभी बाबा की मुरली में आता है, विकर्म विनाश होते हैं, नशा चढ़ेगा, आत्म विश्वास बढ़ेगा, जो थे वैसा बनने का फिर से उमंग आएगा। स्वदर्शन चक्र फिराने के बहुत सारे फायदे हैं। आप में से किस किस को लगता कि मैंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, हाथ खड़ा करेंगे प्लीज। किसी में जरा भी डाउट है तो आज हटा दीजिए और एक ही दृढ़ संकल्प रखिए कि मैंने ही 84 जन्म कल्प कल्प लिया है और मैं ही 84 जन्म लेने वाली वो कल्प पहले वाली आत्मा हूं। ठीक है, तो करेंगे सभी चक्र फिराएंगे, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। कमेंट्री के साथ साथ हम बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, और जैसे ड्रामा का चक्र फिरता है ना, ऐसे ही आप मूवमेंट भी चक्र फिरने की तरह अपने आप को देंगे। ओम शांति। मैं एक महान आत्मा हूं। कोटों में कोई में भी कोई, दिव्य कुल की आत्मा हूं। इस धरती पर मेरा पहला जन्म स्वर्ण काल सत्युग में हुआ। स्वयं को देखे सत्युग में, अपने सर पर ताज, राजाई का तिलक, अपने आप को देखे राज सिंहासन पर, सिंहासन के पीछे चतुर्भुज विष्णु का चित्र, सूर्यवंशी घराने में देवता के रूप में मैंने 8 जन्म लिए। तन का सुख, निरोगी कंचन काया, मन का सुख, सदा बेफिकर शांत स्थिर मन की धनी रही मैं। प्रेम प्यार सद्भावना की दुनिया में पूरे 1250 वर्ष सुख शांतिमय जीवन व्यतीत किया मैंने। याद करें स्वर्ण काल के वो 1250 वर्ष, सोने के महलों में हीरे जवाहरतों की चढ़त देखे, अपने महल के सामने सुंदर पुष्प विमान, अकिचार धन, पूरे 1250 वर्ष जीवन मुक्त अवस्था। सुंदर सुंदर बाग बगीचे, पिकनिक के लिए सुंदर सुंदर पहाड़ियां, भगवान की बनाई हुई ये सुंदर दुनिया जिसका संपूर्ण सुख लिया मैंने, अब क्लॉकवाइज एक चौथाई घूम जाए। एक चौथाई घूमेंगे बस। देखे स्वयं को त्रेता युग में, चांदी के युग में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की दुनिया में, धर्म न्याय सत्य की दुनिया में, चंद्रवंशी के रूप में मैंने 12 जन्म लिए। सकारात्मकता ही सकारात्मकता, खुशियों की बहार, प्रकृति भी सतो प्रधान सुखदाई और मैं आत्मा भी सुखदाई। बारह सौ पचास वर्ष मैंने 12 जन्म लिए, कोई बुढ़ापा नहीं, सुख शांति आनंद प्रेम में रास विलास करते त्रेता का ये समय भी पार हुआ। अब हम पहुंचे द्वापर में और एक चौथाई घूम जाए। तांबे का ये युग, समय की गति में देह अभिमान ने प्रवेश किया, पवित्रता की शक्ति नष्ट हो गई, धरती ने उथल पाथल मचाया, राजा विक्रमादित्य ने हीरों के लिंग का मंदिर बनाया, जहां तहां शिवजी की उपासना, भक्ति पूजा पाठ का सतो प्रधान माहौल। द्वापर के किस जन्म वैश्य कुल में बिताए हमने, निस्वार्थ भाव से देने की भावना कम होती गई, कुछ मिले तो मैं दूं, वैश्यपना आ गया। ये भी ड्रामा की नोंद थी, द्वापर के 1250 वर्ष। कभी शिव जी की उपासना, कभी श्री कृष्ण की भक्ति, कभी श्री राम की आराधना करते करते बीत गए। अब हम पहुंचे कलयुग में। कला क्लेश की दुनिया, चारों तरफ अज्ञानता का अंधकार छा गया। पूर्णतया भूल गए मैं कौन, कहां से आया, मेरे पिता कौन, सब कुछ भुला दिया मैंने। अपने पिता को भूलने के कारण मेरी दुर्गति हो गई। कलाहीन हो गई मैं आत्मा, शक्तियां क्षण हो गई। गुण मर्ज होते गए और अवगुण प्रकट होते चले गए। शुद्रपना आ गया मुझ में, असत्य ने, अधर्म ने, अन्याय ने मेरे मन को घेर लिया। तमो प्रधान स्थिति में पहुंच गई मैं आत्मा, दर दर भटकती रही 1250 वर्ष। कभी कोई तीर्थ तो कभी कोई तीर्थ, कभी देवी देवताओं की तो कभी लोक देवता की पूजा, कभी तत्वों की पूजा, जल देवता, वायु देवता, अन्न देवता, अग्नि देवता, सब की पूजा की मैंने। मैं बिल्कुल पतित पुजारी बन गई। दुख शांति निराशा और हताशा के बादल मेरे जीवन गगन में छा गए और ऐसी निराशा की स्थिति में थोड़ा सा घूम जाए, जैसे संगमयुग सत्ययुग से थोड़ा कम दिखाते हैं, पूरे कल्प का ये सुनहरा अवसर आया जब मुझे भगवान मिले। याद करें वो पहला दिन जिस दिन आपको बाबा का ज्ञान मिला। ये मेरे जीवन का सबसे सुंदर अवसर था। जब मुझे मेरे असली पिता की पहचान मिली, अज्ञानता का अंधकार दूर होने लगा, पूरे कल्प का सबसे अनमोल समय डायमंड एज संगम युग में हूं मैं। स्वयं भगवान मेरे माता पिता बंधु सखा स्वामी शिक्षक सब कुछ बन गए। भाग्य विधाता भगवान ने भाग्य का द्वार खोल दिया। वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वहां संगम का ये सुहावना समय, एक सुंदर गीत बजेगा, बाबा आपने कमाल कर दिया। आप सभी बाबा की ओर देखें और दिल की गहराई से बाबा को शुक्रिया करें। बाबा आपने मुझे क्या से क्या बना दिया, कौड़ी से हीरा, कांटे से फूल, पतित से पावन, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी, गीत को सुनते सुनते अपने दिल के भाव बाबा को समर्पण करें। अपने अपने स्थान पर बैठ सकते हैं।
खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। हो ओ बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। उलझन में मार्ग बताया आपने।
हम तो थे उलझन में, मार्ग बताया आपने।
हम तो थे गफलत में, आके जगाया आपने।
हम तो थे गफलत में, आके जगाया आपने।
आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, निहाल कर दिया। हो तो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा तो प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। प्रकाश आपने,
हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आपने।
पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने,
पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने।
आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया, हमाला माल कर दिया। हो ओ बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने,
हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने।
आपकी शुभ शिक्षा ने हमको बेमिसाल कर दिया, बेमिसाल कर दिया। हो तो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा तो प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। हो तो
बाबा आपने कमाल कर दिया, तो प्यारे
शांति। बड़े दीदी ने आग्रह किया था कि आप शॉर्ट में अपना अनुभव सुनाना, तो मैं बहुत शॉर्ट में अनुभव सुनाना चाहूंगी। जब 11वीं की पढ़ाई कर रहे थे तब बाबा का ज्ञान मिला, और आप समझ सकते हैं कि स्टडी कैरियर में एक ही फोकस क्या होता है, पढ़ाई। परंतु जो ज्ञान मिला बाबा से, जो मेडिटेशन बहनों के द्वारा सीखा, उसका बहुत फायदा मुझे मेरे स्टडी लाइफ में होने लगा। इंग्लिश का पेपर था और उसमें हमें 10 एमिनेंट पर्सनालिटीज के बायोग्राफी पढ़ाया गया था और एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था जिसमें या तो आपको इनका बायोग्राफी लिखना है या फिर किसी और का लिखना है, आइदर और वाला क्वेश्चन था। तो बहुत अच्छे से नोट्स भी बनाए थे, पढ़ाई भी की थी, परंतु जब पेपर हॉल में आंसर लिखने की बारी आई तो 10 पर्सनालिटीज के बारे में जो कुछ पढ़ा था सब खिचड़ी बन गया, कुछ याद ही नहीं आ रहा। ऐसे लग रहा है जिन, मान लो शास्त्री जी के बारे में पूछा गया था तो जो शास्त्री जी के बारे में था वो भी कुछ याद आ रहा था, कुछ बाकियों के भी याद आ रहे थे, तो एग्जैक्टली पता नहीं पड़ रहा था है क्या। और मुझे तुक्का लगाने की आदत बिल्कुल नहीं थी, आता है तो लिखूंगी, नहीं आता है तो नहीं लिखूंगी, एकदम ब्लैंक कहते ना, ऐसा हो गया। अब मेरा नर्वसनेस बढ़ता चला गया, हाथ से पसीना छूटना शुरू हो गया, आजू बाजू देखा सब लिख रहे हैं, और जैसे देखा सब लिख रहे हैं तब और नर्वसनेस बढ़ता गया। तो फिर सौभाग्यशाली रही, पूरा ही लौकिक परिवार ज्ञान में चलता है, माताजी पिताजी भी ज्ञान में थे, तो पिताजी हरदम कहते थे बेटा एग्जाम लिखो तो बाबा को आह्वान जरूर करो। तो वैसे आह्वान करके ही शुरू किया था लेकिन लिखते लिखते भूल गई थी। तो अब जब ऐसी मानसिक स्थिति तो फिर बाबा याद आया, फिर मैंने कहा बाबा अब तो तू ही सहारा। और जैसे ही ये अंदर से बाबा शब्द आया, आप मानेंगे नहीं, मुझे आज भी वो दृश्य याद आता है, मैंने जो नोट्स बनाए थे ना वो नोट्स मेरे सामने आ गए और मैं ऐसे ऐसे पढ़ रही हूं लाइन आफ्टर लाइन, और जैसे ही पूरा पन्ना मैंने पढ़ लिया तो पन्ना वैनिश हो गया और उस क्वेश्चन का आंसर मैंने वर्ड बाय वर्ड जैसा मैंने प्रिपेयर किया था वैसा का वैसा लिखा। ये मेरा 12वीं का बोर्ड एग्जाम था, इतना अधिक मेरा बाबा में विश्वास, निश्चय और बाबा के लिए भावना बढ़ गई, आप मानेंगे नहीं। मुझे लगा जीवन में सफलता के किसी भी मुकाम को हासिल करना है तो आधार कौन है, बाबा। फिर मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां पे मैंने एडमिशन लिया वहां 25 किलोमीटर दूरी पे सेंटर था, हॉस्टल में रहते थे, लेडीज हॉस्टल में बहुत सारे नियम होते हैं, आपको शाम को 6 बजे से पहले हॉस्टल में पहुंच जाना है, 4 बजे तक तो कॉलेज के क्लासेस ही होते थे, अब 25 किलोमीटर जाएं और 6 बजे के पहले पहले आ जाएं ऐसा संभव नहीं था। पर मैंने एक नियम बनाया था कि मुझे किसी भी हालत में बाबा की मुरली जरूर जरूर पढ़नी। आजकल सब कुछ अवेलेबल होता है, नेट पे अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे आ जाता है, उस समय नहीं होता था। उस समय मुरली का सोर्स एक सेंटर ही हुआ करता था, तो मैं हफ्ते 10 दिन में सेंटर जाती थी, पुरानी मुरलियां देती थी और पुरानी ही मुरलियां मिलती थी, हमको डेट वाइज मुरली नहीं मिलती थी। तो मैं अपने पास अव्यक्त वाणियों की किताब रखती थी, तो मेरा रोज का खाना होता था अव्यक्त वाणी। साकार मुरली तो कई बार एक एक महीना तक सेंटर जाना संभव नहीं हो पाता था, परंतु बाबा की पालना मैंने बहुत 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 महसूस किया। जिस दिन बाबा मिलन का दिन होता था, पहले वॉकमैन यूज होता था, आप लोगों को पता होगा वॉकमैन छोटा सा होता था ना, रेडियो, हाँ जी हाँ जी। तो मैंने भी एक वॉकमैन रखा था, कैसेट्स होते थे तो बाबा के बहुत सारे कैसेट्स रखे थे, ये 1994 की बात है जी। तो मैं उस दिन वो वॉकमैन लेके ऊपर छत पे चले जाते थे और मेरे फ्रेंड्स को कह देते थे कि आज मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। आप मानेंगे नहीं, वो 3 घंटे का जो समय होता था ना बाबा मिलन का, बहुत बहुत कसम होता था। मुझे महसूस होता था कि बाबा मुझ में शक्ति भर रहे। तो इस प्रकार से सेंटर जाने को न मिलने पर भी मैंने बाबा का बहुत बहुत पालना का महसूस किया और वो चीजें मुझे और मजबूत बनाती चली गई। फिर मैंने इंजीनियरिंग पूरा होने को आया, मुझ में बहुत नर्वसनेस था, जैसे वाइवा वोस होता है ना, तो मैं बहुत नर्वस हो जाती थी। थ्योरी पेपर में सब लिखा है परंतु इंटरव्यू में सब भूल जाते थे। तो मेरे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे उनको पता था कि ये बच्ची एकेडमिकली बहुत अच्छी है, तो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। वो मुझे कभी कभी ऐसा भी कहते थे, जाओ जाओ पानी पी के आओ, सो दैट आई गेट कंफर्टेबल, और जो मुझे मालूम है, मैंने पढ़ा है, वो मैं बोल सकूं। फिर भी वो मुझे नहीं प्रेरित कर पाते थे, मैं कुछ ही प्रश्नों का जवाब दे पाती थी और कुछ प्रश्न तो ऐसे ही हाथ कांपते रह जाते थे। तो जैसे ही मेरा पूरा होने को आया 4 साल की पढ़ाई, तो हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, इट्स गुड फॉर यू दैट यू गो इन टीचिंग प्रोफेशन। मुझे उन्होंने सजेस्ट किया कि आप एकेडमिकली इतनी अच्छी हैं, आप टीचिंग में जाएंगी तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो उनकी बात मानते हुए मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। इंटरव्यू का डेट आ गया, मैंने पिताजी से कहा, तो पिताजी ने कहा कि नहीं, वो नॉक्सलाइट एरिया है, वहां पर आपको नहीं जाना है। मैंने दिमाग से निकाल दिया, पर इंटरव्यू के 3 दिन पहले इतने स्ट्रॉन्ग संकल्प कि मुझे इंटरव्यू देने जाना है, जाना है, जाना है। मैंने पिताजी से कहा, मैंने कहा मुझे इंटरव्यू देने जाना है। पिताजी ने कहा वो नॉक्सलाइट एरिया है। मैंने कहा मैं ज्वाइन नहीं करूंगी, पर मुझे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस तो लेने दो। पापा ने कहा ठीक है, दिस इज ओके। पापा मुझे खुद लेके गए। इंटरव्यू का जो पैनल था 15 लोग बैठे हुए थे, कॉलेज में वाइवा वो उसमें 3 लोग बैठे होते थे और मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाते थे, और वहां पूरे 15 लोग बैठे थे और तैयारी भी नहीं थी क्योंकि दिमाग से निकाल दिया था। मैंने बस बाबा को संकल्प दिया कि बाबा ये आपकी जिम्मेदारी कि बच्ची का इंटरव्यू अच्छे से हो जाए। और मैं जैसे ही इंटरव्यू हॉल में पहुंची, बाबा याद था मुझे, और मैंने जैसे पता नहीं कितने वर्षों से मैं पढ़ाती आई हूं, उस कॉन्फिडेंस के साथ जैसे ही अंदर गई तो मुझे कहा, 15 मिनट का टॉक तैयार करने के लिए कहा गया था, तो मुझे कहा कि आप अपना टॉपिक ब्लैकबोर्ड पे लिखो और अपना टॉक देना शुरू करो। तो मैंने गजब के कॉन्फिडेंस के साथ चौक उठाया और ब्लैकबोर्ड पे टॉपिक लिखा। मैंने थ्योरीज ऑफ फेलियोर टॉपिक चूज किया था, अभी भी मुझे याद है। तो मैंने ब्लैकबोर्ड पे लिखा थ्योरीज ऑफ फेलियोर और फिर मैंने बोलना शुरू किया। आप मानेंगे नहीं, मुझे कंटिन्यू 2 मिनट भी बोलने नहीं दिया गया। 2 मिनट बोला है फिजिक्स एचओडी ने क्वेश्चन पूछा, फिर 2-3 मिनट बोला है केमिस्ट्री के एचओडी ने कोई क्वेश्चन पूछा, फिर 2-3 मिनट बोला है मैकेनिकल हेड ने कुछ पूछा, फिर थोड़ा बोला है सिविल हेड ने कुछ पूछा। 50 मिनट इंटरव्यू चला, कितना 50 मिनट्स। मुझे पूछा कि आपको यहां हम ज्वाइनिंग देंगे तो आप ज्वाइन करेंगे? मैंने कहा पिताजी को ऐतराज नहीं हो तो मैं ज्वाइन करूंगी, और उन्होंने नोटिस किया था कि इस बच्चे के साथ इसके पिताजी आए हैं। तो कैफेटेरिया होता था ना, तो हम तो बाहर का खाते नहीं थे, तो टिफिन साथ में लेके गए थे। तो मैं और पिताजी कैफेटेरिया में वहां पेड़ के नीचे टिफिन कर रहे थे, ये भी डायरेक्टर सर के नोटिस में था। तो उन्होंने कहा यस आई हैव सीन योर फादर विथ यू, आप उनको लेके आ जाओ। तो बगल वाले हॉल में उन्होंने बुलाया था, तो पिताजी के साथ में गई, पिताजी से कहा कि आपकी बेटी को हम यहाँ ज्वाइनिंग देंगे तो आप तो कोई ऐतराज है? तो पापा ने कहा अगर ये ज्वाइन करना चाहे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। उस दिन मुझे लगा ड्रामा बलवान है, उस दिन मुझे ड्रामा का पार्ट यहाँ बहुत पक्का हो गया। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन जो होनी होती है उसको टाल भी नहीं सकते हैं, दोनों ही चीजें, दोनों ही बात सही है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि वेट फॉर सम टाइम, तो मैं और पिताजी वेट करते रहे। कुछ देर के बाद डायरेक्टर सर एक लेटर लेके आए और मेरे हाथ में दिया और कहा दिस इज योर ज्वाइनिंग लेटर। फिर मुझे कहा कि मेरे 35 साल के रिक्रूटमेंट के करियर में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी कैंडिडेट को इंटरव्यू के दिन हाथ में ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है। मुझे इतना पक्का होता गया कि भगवान जैसा साथी और मददगार संसार में कोई हो नहीं सकते। फिर मैंने 4 साल जॉब किया, सेंटर पे ही रहकर मैं जॉब करने जाती थी तो बाबा की सेवाओं में इन्वॉल्व होती गई, तो मुझे महसूस हुआ कितनी ज्यादा बाबा की सेवाएं हैं, तो मुझे कहां 8 घंटा उस कॉलेज में देने की जरूरत है। फिर मैंने मन ही मन संकल्प किया, बाबा को भी संकल्प दिया और फिर मैंने रिजाइन किया। उसकी भी अपनी पूरी स्टोरी है पर मैं समय नहीं लेना चाहूंगी, आदरणीय भाई साहब आ चुके हैं। तो इस प्रकार से फिर मैंने संकल्प किया कि भगवान कहता नौकरी टोकरी है तो ये टोकरी मुझे अब नहीं उठानी है, तो मैंने रिजाइन किया और फिर बाबा की सेवा में पूरी तरह से अपने समय संकल्प और शक्तियों को सफल कर रही हूं। मैं एक चीज बताना चाहूंगी, मुझे मेरे जो उस समय के एग्जिस्टिंग कलीग्स थे उन्होंने मुझे कहा फिर पढ़ के क्या फायदा, आपने इतना कुछ लर्न किया क्या फायदा, लेकिन मैं बता रही हूं हमने जो कुछ भी पढ़ा वो कभी भी बेकार नहीं जाता, वो आज भी हमारे काम में आती है। जो अलग अलग कंपनीज में मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेशंस होते हैं वो लेने में मैंने जो मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी वो मुझे आज भी काम में आती है। आज किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, कोई भी कंपनी में जाते हैं, क्योंकि हमारे समर में किसी भी 2 कंपनी में हमें एक एक महीने का वो ट्रेनिंग लेना होता था, तो हमें उसका माहौल पता है, इंडस्ट्री का माहौल कैसा होता है, वहां का शेड्यूल कैसा होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज का कल्चर कैसा होता है, तो ये सारे एक्सपीरियंस हमें हेल्प करते हैं ऐसे फील्ड में सेवा करने के लिए। इसलिए कभी हम ऐसा भी ना सोचें कि अगर पढ़ लिख कर हम समर्पित हो गए तो हमारा इतना पढ़ना लिखना किस काम का। ये मैंने अनुभव किया है हमारे अंदर जो भी स्किल्स है वो स्किल्स ज्ञान में आने से और निखर जाती है, और हमारी हर स्किल को बाबा अपनी सेवा में किसी भी प्रकार से यूज में जरूर लेता है। इसलिए बाबा को दिल से बहुत 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 शुक्रिया। ओम शांति।